तस्वीर, सूरत काफ, मक्की सूरत है। इसके 3 रुकू और 45 आयात हैं। कलेमात की तादाद 357, हुरूफ की तादाद 1494 है, 1494। इसका नाम जो है, इसकी पहली आयत के आगाज से लिया गया है, काफ। तो ये इसका कुरानी नाम है। हरूफ मुकत्तात में से एक हरफ पर मुश्तमिल इस सूरत को सूरतुल बासिकात भी कहा जाता है। सूरतुल बासिकात, और बासिकात जो है ये आयत नंबर 10 से ये लफ्ज लिया गया है, और बासिकात के मानी है बुलंदो बाला। सूरत काफ का जो मौजू है ये आखिरत है। पूरी की पूरी सूरत इसका मौजू जो है वो आखिरत के गिर्द घूमता है। और ये वो अजीम सूरत है, ये वो खूबसूरत सूरत है कि मोतबिर रवायात से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ईदैन की नमाजों में इस सूरत की तिलावत किया करते थे। उम्मे हशाम बिन हारिसा बिन नौमान कहती हैं रजी अल्लाह अनहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पड़ोसन थी, रसूलुल्लाह के घर के बहुत करीब था इनका घर। बयान करती हैं कि 2 साल के करीब हमारा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तनूर जिसमें रोटी पकती थी एक ही था। मुझे सूरत काफ पूरी इस तरह हिफ्ज हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत हर जुमे को मिंबर पर खुतबे में तिलावत फरमाया करते थे। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है कि जुमे के खुतबों में अक्सर आपकी जबान मुबारक से वो इसको सुनती तो इसको हिफ्ज कर लिया। तो आप देख लें कि खाना पकाते हुए भी, घर के काम करते हुए, पड़ोसन थी ना, तो सूरत काफ हिफ्ज कर ले। तो सोबते सवाले के असरात। फिर बाज रवायात में ये भी आता है कि फजर की नमाज में आप कसरत से इस सूरत को पढ़ा करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो जो हैं, उन्होंने अबू वाकिद से दरियाफ्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाजों में कौन सी सूरत पढ़ा करते थे। तो उन्होंने फरमाया, काफ वल कुरानिल मजीदी और इक्तरबतिस सातु। और हजरत जाबिर रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में बकसरत सूरत काफ की तिलावत किया करते थे। ये सूरत खासी बड़ी है मगर इसके बावजूद नमाज में हल्की रहती थी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का बड़ा अच्छा असर होता था कि बड़ी से बड़ी सूरत और तवील से तवील नमाज भी पढ़ने वालों पर हल्की रहती थी। बाज़ औक़ात कोई बहुत अच्छी तिलावत कर रहा हो, बहुत अच्छा सबक सुना रहा हो, तो इंसान पर वो भारी नहीं होता, फिर उसको मुश्किल नहीं लगता। और जो है वो बाज़ लोग जो है वो क्या कहते हैं कि सूरत काफ से जो है वो शुरू होता है सिलसिला किस चीज का। जैसे मैंने बताया था ना कि सूरतों के जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे तिवाले मुफस्सल जो हैं वो सूरत काफ उसकी पहली सूरत है, और कुछ कहते हैं कि सूरत अल हुजरात जो है वो इसकी पहली सूरत है। तो बहरहाल यहां से जो है वो सूरतों का एक छठा ग्रुप शुरू हो रहा है। इसमें कुल 17 सूरतें हैं, और जिनमें से 7 सूरतें जो है वो मक्की हैं। और जो सूरत अर रहमान है ना, इसके बारे में इख्तलाफ है, बाज उसको मक्की लिखते हैं बाज मदनी। और सूरत वाकिया के बाद जो 10 सूरतें हैं, सूरत हदीद, मुजादला, हशर, मुमतहिना, सफ, जुमा, मुनाफिकून, तगाबुन, तलाक और तहरीम, वो मदनी हैं। तो 7 सूरतें मक्की हैं, जैसे काफ, जारियात, तूर, कमर, नजम, रहमान और वाकया, और अगली 10 मदनी। तो बहरहाल अब आप देखिए कि ये जो सूरतें हैं हमारे सामने अल्लाह ताला की एक एक करके आ रही हैं और किस तरह जो है वो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। काफ काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है कुराने मजीद की। तो आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक कुरान मजीद की अजमत और रफत उसको जो है वो बयान किया गया है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कोई शायरी की किताब नहीं है। क्या कहा? वल कुरानिल मजीद, कसम है कुराने मजीद की। और ये लफ्ज जो है मजद, मजद का लफ्ज जो है ये बुजुर्गी, बर्तरी, अजमत उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो है वो क्या बात कही जा रही है कि कसम है कुरान की, और कुरान भी कौन सा कुरान? वो कुरान जो बड़ी बुजुर्गी वाला है, बड़ी बर्तरी वाला है, बहुत ही आला है। और वैसे मजीद का अगर रूट देखें तो रूट क्या है? मजीद का रूट क्या है मानी फिर? तो इसका रूट मीम जीम दाल है, और इसके मानी जो है वो यहाँ पे अल्लाह ताला की जो सिफ्त है कि अल्लाह खुद बुजुर्ग है, बरतर है, बा अजमत है, और आप देख लें कि उसने जो है वो कुरान मजीद जैसी अजीम, बुजुर्ग और बुलंद मर्तबा किताब जो है उसको नाजिल किया। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वल कुरानिल मजीद, तो कुरान बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो कुरान जो है इसका नाम है, और अल मजीद भी इसका सिफाती नाम है। और मजीद के दो मानी हैं, एक तो बाअजमत और बुलंद मर्तबा, और दूसरे करीम, बहुत ज्यादा नफा पहुंचाने वाला। तो कुरान मजीद जो है अपनी जबान, मजमून, असरात और नफों के लिहाज से, अपनी तालीम और हिकमत के लिहाज से एक मोजा है, खैरे कसीर है, करीम है। और अहले मक्का जो था, अहले मक्का जो थे वो कुरान मजीद का इनकार करते थे। बल अजेबू, बल्कि उनको ताज्जुब हुआ, अंजा अहम के आया इनके पास, किनके पास? अहले मक्का के पास। कौन आया? मुनजिरुन, एक खबरदार करने वाला। मुनजिर के मानी होते हैं जो खबरदार करने वाला है, तो उनके पास एक खबरदार करने वाला आया। मिनहुम, उन्हीं में से, कि इंसानों में से ही, अहले मक्का वालों में से ही एक पैगंबर जब बनाकर उनके सामने भेजा गया, उनके पास भेजा गया, तो उस पर उनको बड़ी ही हैरत हुई। और ये पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकाल अल काफिरूना, पस कहा काफिरों ने, पस काफिर कहने लगे, हाज़ा शैउन अजीब, कि ये तो अजीब बात है। तो अहले मक्का का पहला एतराज क्या था? वो इस बात पर जो थे बहुत ही हैरत ज़दा थे, मुतअज्जिब थे कि अल्लाह ने डराने वाला क्यों भेज दिया। और दूसरा उनका हैरत ज़दा होना, उसकी वजह ये थी कि उन्हीं में से क्यों भेज दिया, फरिश्ता क्यों नहीं भेजा। तो कहने लगे, हाज़ा शैउन अजीब, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे तुराब, मट्टी, ज़ालिका रजउम बईद, तो ये वापसी जो है, रजउन, रजउन का लफ्ज मस्दर है, फिर लौट कर आना, लौट आना। तो क्या है कि फिर वापसी जो है, बईद, बईद दूर की चीज को कहते हैं, बहुत से है ना, तो फिर ये वापसी जो है ये बहुत ही जो है ये अकल से बईद है। तो ये इनका एक और ताज्जुब था, एक तो पैगंबर के बारे में ताज्जुब, डराने वाला क्यों आ गया, और दूसरा ताज्जुब ये था कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा कैसे हो जाएंगे, जब हम मट्टी हो जाएंगे तो फिर जिंदा कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा इनका ताज्जुब जो था वो ये था, ज़ालिका रजउम बईद कद अलिमना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं बेशक हम जानते हैं, कद अलिमना हमें पता है, क्या पता है, मा तनकुसु, जो कम करती है, कद तन कुसू नक्स से है कम करना घटाना, यहाँ पे फेल मजारे है कि जो घटाती है कम करती है अल अर्दू जमीन मिनहुम इनमें से, कि जमीन जो है जो भी घटाती है जो भी कम करती है वो हम जानते हैं। वइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास है किताब महफूज रखने वाली। तो यहाँ पर जो है दो बातें कही गई हैं, और इनमें से पहली बात ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद जमीन में रल मिल जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, तो फिर हमें जो है दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको पता ही है ना कि जमीन में इंसान दफन किया जाता है, जब दफन किया जाता है तो मट्टी बन जाता है, क्योंकि मट्टी ही से वो बना, फिर वो मट्टी बन जाता है, रल मिल जाता है, रमीम है ना, हड्डियां भी बहुत सीधा हो गई। तो जब मट्टी बनकर मट्टी में मुंतशिर होकर जमीन में फैल गया तो दोबारा उसको जिंदा कैसे किया जाएगा। तो उनके इनकार की ये एक वजह थी, और वो ये बात कहते थे कि हम जब जमीन में रल मिल जाएंगे तो जमीन हमें निगल जाएगी तो हमें जिंदा कैसे किया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो है अल्लाह ताला जो है वो इसका जवाब दे रहे हैं, उनको ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि जमीन जो है क्या कुछ घटाती है, किस तरह घटाती है, कि ये अल्लाह की कुदरत है कि इंसान के जिस्म के अज्जा जो जमीन में बिखर जाते हैं और आइंदा बिखरते रहेंगे, तो उनको जमा करना और फिर उनको जमा करके इंसान बनाकर खड़ा कर देना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, ये चीज जो है ये नामुमकिन नहीं है। ये चीज जो है वो अल्लाह ताला ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आपको जो है वो हदीस भी आती ही होगी कि एक शख्स ने जो है जब वो जो है वो मरने लगा तो उसने अपने घर वालों को वसीयत की थी। उसने क्या वसीयत की थी कि मुझे जो है मरने के बाद जलाना, जलाकर जो है मेरी राख को जो है कुछ में हवा में उड़ा देना, कुछ को पानी में बहा देना और कुछ को मिट्टी वगैरह में छुपा देना। तो इस तरह की उसने ये वसीयत की थी, और उसका मकसद क्या था कि ताकि मेरा हिसाब किताब ना हो, है ना। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने क्या किया था, फिर हवाओं को हुक्म दिया कि उस मिट्टी को जमा किया जाए, और फिर इसी तरह समंदर, और फिर इसी तरह मिट्टी में से सबको जमा करके, और फिर उसको जब इंसान बनाया गया, फिर उससे पूछा गया कि बता ये तूने कैसा किया, लंबी हदीस है, और उसका निचोड़ के उसने कहा था कि तेरे डर की वजह से, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, है ना। तो असल बात क्या है कि जमीन जो कुछ इनमें से घटाती है, कद अलिमना, हम जानते हैं, तहकीक हम जानते हैं, मातन कुसुल अर्द मिनहुम, कि जो कुछ जमीन इनमें से घटाती है अल्लाह इसको जो है वो खूब जानता है। तो बताया जा रहा है कि तुम ये समझते हो कि मैं जिंदा नहीं कर सकता दोबारा, तो मेरे अंदर ये कुदरत है कि जिस्म के जरात अगर मट्टी में मिल भी जाएं तब भी वो अल्लाह के इल्म में है, और जमीन में इंसान जब चला जाता है, मट्टी अगर उसमें कमी बेशी करती है, जमीन उसमें कमी बेशी करती है, तो कहीं इंसान ये नहीं कि बस फिर अल्लाह उसे कुछ कर ही ना सके, बल्कि अल्लाह ताला जो है उनकी जात कैसी है, वाइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। इसके क्या मानी है, इसके मानी ये हैं कि जमीन जब इंसान के गोश्त हड्डी बाल वगैरह को बोसीदा करके खा जाती है, रेजा रेजा कर देती है, तो ना सिर्फ वो हमारे इल्म में है बल्कि हमारे पास लोहे महफूज में दर्ज है। हमारे पास एक ऐसी किताब है जो कि किताबुन हफीज है। ये कौन सी किताब है, लोहे महफूज, और इसमें तमाम अज्जा जो हैं कि कब हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कैसे उनको जमा करना है, और ये पूरी बात जो है वो रिकॉर्ड के तौर पर रजिस्टर में हमारी किताब में महफूज है। हमारे फरिश्ते जो हैं वो आनन फानन इसका रिकॉर्ड तैयार करते जाते हैं, तमाम इंसानों के जिस्म वैसे ही बना दिए जाएंगे, और वैसे जैसे कि दुनिया में उन्होंने जो था वो काम किया था। अब बाहर लग रहा है कि खत्म हो रहे हैं इंसान, बिखर रहे हैं, मिट रहे हैं, लेकिन किताबुन हफीज जो है उसमें रिकॉर्ड तैयार है। तो जो अहले मक्का थे उनके इतराजात का अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है क्या फरमाया, बल्कज़बू, बल्कि उन्होंने झुटलाया, बिलहक की हक को, कि सच्ची बात को उन्होंने झुटला दिया। वजह ये नहीं है कि जो है वो ये समझते हैं कि भी जो है जो उनका झुटलाना था, उनका इतराज करना था, और उनका ये समझना कि कयामत आ नहीं सकती, तो वजह ये नहीं है कि वो वकूफ पजीर नहीं हो सकती। असल बात क्या है कि इन्होंने हक को झुटला दिया, और हक को कब झुटलाया, लम्मा जाअहुम, जब इनके पास आ गया। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, हक आने के बाद इन्होंने उसको झुटला दिया। फहुम फी अमरिम मरीज, बल्कि ये लोग हैं एक ऐसे बात में मरीज जो के उलझी हुई है। तो अमर इन मरीज, अमर जो है इसके मानी क्या होते हैं, अमर का लफ्ज इस्तेमाल होता है बात के लिए और कोई अहम बात भी, और मरीज जो है मीम रा जीम से है। मर्ज के मानी क्या होते हैं, खलत मलत, गडमड हो जाना, खलत मलत होना, गडमड होना, मुख्तलत, मुस्तरिब, मुल्तबिस, उसके लिए ये अल्फाज, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सूरत रहमान में भी पढ़ा, सूरत जब दौरा तफसीर आपने पढ़ा था, मरज अल बहरैन यल्तकियान, है ना, तो खारी और शीरी दोनों किस्म के दरिया अल्लाह ने छोड़ रखे हैं और जो आपस में टकराते हैं। फिर जो है गोया के यहां पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि इनकी जो बातें हैं ना, इनके अंदर एक उलझाव है। हक को, कुरान को, पैगंबर को, इस्लाम को, उसका ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये नहीं कि हक इनके पास नहीं आया, ये नहीं कि अल्लाह फिर कयामत को पैदा नहीं कर सकता, ये वजह नहीं है। असल वजह जिसकी वजह से ये इनकार कर रहे हैं वो क्या है कि मरीज, फी अमर मरीज, के मुख्तलिफ चीजें आपस में गड़मड़ हो गई हैं। बाज लोगों ने मरीज का तर्जमा फासिद भी किया है, जब चीजें आपस में मिल जाती हैं, गड़मड़ हो जाती हैं तो खराब हो जाती है ना। तो काफिर जो थे रसूलल्लाह की इनकार के बारे में और इस्लाम से जो वो मुनकिर हुए, इस्लाम का इनकार किया, तो एक बात पर नहीं जमे हुए थे, बल्कि क्या था कि उनकी बातों के अंदर जो था वो एक उलझाव था, उनकी बातों उनके अंदर जो था वो एक तनाकुद था। तनाकुद का मतलब क्या है, कभी एक बात कभी बिल्कुल दूसरी बात, उनकी बातों के अंदर जो था वो एक ऐसी कैफियत थी कि कभी एक बात करते थे कभी बिल्कुल दूसरी बात। कभी रसूल अल्लाह को कहते कि ये तो है शायर, कभी कहते कि काहिन, और कभी कहते कि ये है जादूगर। तो ये आप दलील दे सकती हैं, फहुम फी अमर मरीज, के ये जो हैं मुख्तलिफ बातें करते हैं। सूरह ज़ारियात में आप पढ़ चुकी आयत 8 में, इन्नकुम लफी कौलि मुख्तलिफ, मुख्तलिफ बातें करते हैं। इसी तरह सूरत नमल की आयत 66, बलिद्दारका इल्महुम फिल आखिरा, के इनका इल्म जो है आखिरत के बारे में थक गया है, यानी असल इल्म से ये महरूम हो गए, उसका इनको इदराक ही नहीं है। फिर फरमाया, अब यहां से आप देखिए तो आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक अल्लाह ताला ने कुरान की अजमत, रफत, बुलंदी, बुजुर्गी, उस पर कसम खाई। कुरान हक, कुरान जिस पैगंबर के जरिए इन तक पहुंचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हक, और जो कुरान और रसूल ने पेश किया दीन इस्लाम वो हक। अल्लाह ने उसकी बुजुर्गी, अजमत, रफत, बुलंदी, उसके करीम होने की कसम खाकर अहले मक्का के इतराजात का जवाब दिया और बताया कि रसूल भी सच है, कुरान भी सच है, और दीन इस्लाम भी सच है। कयामत आके रहेगी, खड़ा जरूर किया जाएगा, हिसाब किताब जरूर होगा। और एक ही बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी कहते रहे, अकीदा हक बयान करते रहे, अकीदा तौहीद बयान करते रहे। और अहले मक्का क्या करते रहे, उनकी बातें कैसी थी, फहुम फी अमर मरीज। अब इसके बाद आयत नंबर 6 से 11 तक आसमान और जमीन की निशानियों की तरफ जो है वो मुतवज्जो किया गया है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, रबूबियत, हिकमत उसकी निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है, और उसके साथ साथ जो है वो आखरत पर दलील दी है। क्या फरमाया कि ऊपर देखो, नीचे देखो, हर जगह जिस शख्स के अंदर जो है वो बसीरत और याद दहानी पाई जाती है, तो वो इनसे इन निशानियों के जरिए जो है वो तौहीद परस्त, मुहिद और आखरत परस्त बन सकता है। अफलम यंजुरु इलस समाई, अच्छा क्या पस नहीं ये देखते आसमान की तरफ, क्या इन्होंने कभी आसमान की तरफ नहीं देखा। गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है, सवालिया अंदाज है, और सवालिया अंदाज हमेशा बड़ा ही मौसर होता है, बहुत असर करता है। अफलम यंजुरु, क्या नहीं इन्होंने देखा, इलस समाई आसमान की तरफ, तो कभी अपने ऊपर नजर उठाकर इन्होंने कभी नहीं देखा। फाऊ का हूं, अपने ऊपर आसमान ऊपर, तो अपने ऊपर जरा आसमान को तो देखें, कैफा बनैनाहा, कैसे हमने इसको बनाया, वज़य्यन्नाहा, और कैसे हमने इसको सजाया, वमा लहा मिन फुरूज, और इसमें कोई रखना नहीं है, आसमान के अंदर कोई जो है वो कमी नहीं है। तो लोगों, तुम आसमान की तरफ गौर तो करो। और आप देखिए सूरत अल मुल्क आयत 3 में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर। यहाँ पे फुरूज कहा, वहां पे फुतूर कहा। और आप देख लीजिए कि फुरूज जो है ये फर्ज की जमा है, और ये शगाफ सुराख को कहते हैं, शर्मगाह के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, है ना। तो यहां पर भी इसके मानी क्या है कि आसमान को इतना खूबसूरत बनाया है और इतना बेहतरीन उसको सजाया है, पूरा का पूरा आसमान, के चांद, सितारे, गैलेक्सीज, कहकशाएं, ये लाखों गुना बड़े अजीमुशान सैयारे जो हैं गेंदों की तरह घूम रहे हैं, सितारे जो मोतियों की तरह चमक रहे हैं, जड़े हुए हैं आसमान पर, पूरा निजाम शमसी, पूरा आसमान जो है, कहते हैं कि निजाम शमसी जो है इसकी सिर्फ एक कहकशां के एक कोने में जो है ना, क्या है कि हमारा सूरज, यानी बहुत ज्यादा सूरज है, बहुत ज्यादा कहकशां हैं और उनमें से एक सूरज है, और हमारे सूरज से हजारों दर्जा ज्यादा रोशन तारे हैं जो आसमान पे चमक रहे हैं। हमारे सूरज जैसे कम से कम 3 अरब दूसरे तारे हैं जो आसमान पर हैं, और इसी तरह 10 लाख गैलेक्सीज हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि जूं जूं साइंस तरक्की कर रही है तो पता चल रहा है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतना कुछ सजाया और कहीं तुम्हें जो है वो कोई कमी नजर आती है, कहीं तुम्हें इसके अंदर कोई सुराख नजर आता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की कमाल कुदरत, अल्लाह ताला की हिकमत, उसकी जो रुबूबियत है ना, उसको दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जो रब ऐसा आसमान बना सकता है तो वो तुम्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता। और फिर आप देखिए कि इसके बाद क्या फरमाया, वल अर्दा, और जमीन, मदद नाहा, हमने इसको फैलाया। मदद नाहा की क्या मानी है कि हमने जमीन को क्या किया, खींचा, मद्दा या मुद्दू खींचना, मद आपने तजवीद में पढ़ा कि जब मद करती हैं तो लंबा करती हैं, खींचती हैं, तो हमने जमीन को खींचा, बिछाया, फैलाया, वाल कईना फीहा रवासिया, और जमा दिए इसमें पहाड़। फिर पहले जमीन को खींचा, लंबा किया, बनाया बड़ा साइज को, फिर इसके ऊपर पहाड़ रख दिए। और आप देख लीजिए कि अब जमीन जो है उसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि ऊपर भी देखो तो नीचे अपने कदमों के नीचे भी देखो कि तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन को बनाया, तवाजुन बरकरार करने के लिए पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। والقینا فیہا رواسیہ، راسیہ تم کی جمع ہے رواسیہ، اور جبال عام پہاڑ ہوتے ہیں، اور رواسیہ وہ پہاڑ ہوتے ہیں جس کے تین حصے زمین کے اندر گڑے ہوئے میخوں کی طرح اور ایک حصہ اوپر نظر آتا ہے، اور آج سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے. اور یہ کیونکہ اللہ نے تاکہ زمین جو ہے وہ ڈھلک نہ جائے، زمین انسان کو لے کر ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالی نے زمین کے اندر جو ہے ایک توازن پیدا کرنے کے لیے یہ کیا. اور زمین جب پیدا کی گئی تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے ہلتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، ڈولتی تھی، انسان جانور اس پر زندہ نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے ایسے مقامات پر پہاڑوں کا سلسلہ بنایا کہ جس سے زمین کا توازن اور تناسب قائم ہو گیا، کہ اب زمین ادھر ادھر اس کا جھکنا، اس کا ہچکولے کھانا ختم ہو گیا. اب وہ جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور حشرات الارض کے لیے، دابت الارض کے لیے جو ہے وہ ایک بچھونا بن گئی. سخت بھی نہیں ہے پتھر کی طرح، اور نہ ہی پانی کی طرح نرم ہے، درمیان میں ہے، تاکہ ہم اس پہ زندگی بسر کر سکیں. والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. وانبتنا فیہا، ہا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ زمین کے لیے آئی ہے، کہ زمین کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ اگا دیا. کیسا؟ من کل زوجن، ہر زوج کا. زوج کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معنی ہوتے ہیں جوڑا جوڑا کے، اور دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قسم قسم کے. تو دونوں معنی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو ہے وہ قسم قسم کی چیزیں پیدا کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مٹی ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، آب و ہوا اور موسم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پودوں کے جوڑے، پودوں کی قسمیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کسیلا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا پیلا ہے. انار کو دیکھ لیں، سفید اور سرخ ہے نا. اور اسی طرح آپ کھجوروں کو دیکھ لیں، تر بھی ہیں اور خشک بھی ہیں. اسی طرح آپ انگوروں کو دیکھ لیں، سبز بھی ہیں اور اس کے ساتھ لال بھی اور گہرے رنگ کے بھی ہیں. تو بہرحال مختلف رنگ کے جو ہیں وہ پھل اور پھول اور پودے اور نباتات جو ہیں وہ دنیا میں مسلسل پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا ہوتی رہیں گی. خوشبوئیں مختلف ہیں، عجیب مناظر ہیں، پربہار مناظر ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو رب ایسا کر سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سورت عبسا جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طُعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. سورة نازعات، أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا متاع لکم ولی انعامکم. قرآن سے جگہ جگہ آپ دلائل جمع کر سکتی ہیں، اور توجہ کیا جا رہا ہے کہ اوپر بھی دیکھو اور نیچے بھی دیکھو، اور ان ساری چیزوں کا نظارہ کرنے کا. آپ یہاں پہ جاتے ہیں نا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب فروٹ کا موسم آتا ہے تو باغوں میں جاتے ہیں. یہاں پہ کس لیے جاتے ہیں؟ پکنگ کے لیے. اور یہاں پہ جو ہے باقاعدہ لوگ اجازت لے کے، ٹرپس لے کے جاتے ہیں، اور پھر فروٹس اور سبزیاں توڑ کر لاتے ہیں، اور ٹرپس ہوتے ہیں اسکولوں میں بھی، اور عام بعض دوست بعض فیملیز مل کر جاتی ہیں، اور تاکہ نیچر کے قریب جائیں اور نیچر کا مشاہدہ کریں. तो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, खाली सिर्फ तफरी और फन के लिए नहीं, बल्कि इन सारे यानी एप्पल पिकिंग है, स्ट्रॉबेरी पिकिंग है, या कोई भी आप जा रहे हैं चुनने के लिए, लेने के लिए, तो मकसद क्या है? तब सिरा तिक्रो अबदिम मुनीब। तो तब सिरा तुम जो है ये बसीरत से है, बसर है ना, आंख के अंदर जो रोशनाई है, दिल के अंदर जो बसीरत पाई जाती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाहिर से गुजर कर इस हकीकत को पाओ कि जिस रब ने ये सारा कुछ पैदा किया है, वो रब तुम्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और हिसाब जरूर लेगा। तो पहली चीज क्या है? तबसिरतन। और फिर इसके बाद, तबसिरे के बाद दूसरी बात क्या है? वह जिक्रा। और जिक्रा जो है इसके मानी क्या है? ऐसी नसीहत जिससे दिल नरम हो, तस्कीर। तो तबसिरा तन जो है ये मस्दर है, और इसके साथ जो है जिक्रा, तो जिक्रा के अंदर भी मानी है कि गफलत को दूर किया जाए, नसीहत हासिल की जाए और दिल नरम हो। और कौन से दिल नरम होते हैं? लिकुल अब्दिन मुनीब, हर वो बंदा अब्द, अब्द क्या है? नौकर, गुलाम, बंदगी। इयाक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो अब्द जो है, इबादत जो है, इसके अंदर बंदगी, गुलामी, नौकरी चाकरी, नौकरी करना ये पाया जाता है। तो ये कायनात के अंदर जो अल्लाह के करश्मे और अल्लाह की नेमतें और अल्लाह की जो कुदरतें बिखरी पड़ी हैं, फाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान ला बिशय मिन नेमति रब्बिना नुकज्जिब, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को झुठलाते नहीं हैं। तो चमन का एक एक पत्ता, रेत का एक एक जर्रा, और फूल की एक एक जो कली है और पत्ती है, पत्ता है, वो हम सबको दावत देती है कि हम जानवरों की तरह बेहिस और बेशऊर होकर जिंदगी मत बसर करें, बल्कि जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। अब्दिन मुनीब, दो सिफात, और एक है कि बंदगी, और दूसरी सिफत क्या है कि मुनीब। और नौब, नौब मैंने कहा था शहद की मक्खी को भी कहा जाता है ना, उससे याद रखें। शहद की मक्खी क्या करती है? दूर का मीलों का सफर तय करके फूल फूल से रस चूसती है, पत्तों के पास जाती है, फूलों के पास जाती है, गन्ने का रस भी और सूरजमुखी का भी और हर तरह के फूलों का, और रस चूसने के बाद वापसी का रास्ता नहीं भूलती, बुलंदी से और जगह जगह से उरूश और गैरा मारूश हर जगह से होती हुई जो है वो अपने घर पे वापस आती है। तो मेरा और आपका घर क्या है? मेरी और आपका मकाम क्या है? कि हम हैं बंदे और अल्लाह है हमारा खालिक और मालिक और हाकिम, और फिर हम उसकी बंदगी शुरू कर दें। तो अगर हमसे सुबह से लेकर रात तक कोई गलती हो जाए, कोई कमी बेशी हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें। 5 दफा मुअज्जिन आवाज देता है, कुरान मजीद को खोले, तिलावत करें, और फिर अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो अल्लाह को अब्द मुनीब जो है वो बहुत पसंद है। वह नज़लना मिनस समाई मान, और हमने उतारा आसमान से पानी। माँ बारिश को कहते हैं, और पानी की यहाँ पे सिफ्त बताई गई है, मुबारकन, बरकत वाला। और मैंने आपको बरकत के मानी बताए थे, कैसे बताए थे कि ऊंटनी जब बैठ जाए, हाँ, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या कहते हैं? बरका, यानी ऊंटनी बैठ जाए। और ऊंटनी अरबों के यहाँ बड़ी जो है वो नेमत समझी जाती है, बहुत बड़ी नेमत, खैर और बरकत। और ऊंटनी फिर सामान उनका लाद कर ले जाती थी, बहुत से उनके फायदे होते थे। तो साजो सामान है, ऊंटनी है, तो बरकत ही बरकत है, बरा का इसी से है। तो पानी जो अल्लाह ने नाजिल किया, बाबरकत पानी नाजिल किया, और बाबरकत पानी जो है इससे क्या मुराद है? ऐसी बारिश मुराद है जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे, जो जमीन के लिए जरखेजी और शादाबी का बायस बने। ऐसी बारिश नहीं जो तबाही का बायस बने, क्योंकि ऐसी बारिशें भी हुई ना जिसने कौमों को तबाह कर दिया। तो मुबारक की सिफ्त है इसलिए इस्तेमाल हुई कि इस शक को दूर कर दिया जाए कि अल्लाह है जो आसमान से मुबारकन। आज मैं घर से जब आ रही थी तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए माँ अम मुबारकन कर दे, मुबारक बारिश बना दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बारिश मैं नाजिल करता हूँ, फअम्बतना बिही जन्नातिन, और इसके जरिए हमने उगाए, फअम्बतना हमने उगाए बिही इस बारिश के जरिए जन्नातिन बागात, और जन्नत जन्नात की जमा है जन्नत उन वाहिद है, ऐसे बागात को कहते हैं जो दरख्तों से घिरे हुए हों, बहुत घने दरख्त और इतने ज्यादा दरख्त के बाग की मट्टी छुप जाए। जन्नत को भी इसलिए कहा जाता है ना कि निगाहों से पोशीदा है, तो ऐसा बाग इतना घना कि मट्टी जमीन नजर ही ना आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उससे ऐसी माँ मुबारक थी कि उससे अल्लाह ताला ने बागात पैदा किए घने बहुत ज्यादा, वहब्बल हसीद और कटने वाले गल्ले, हब्बा जो है वो दाने को कहते हैं और हसीद जो है ऐसे दाने को कहते हैं, ऐसे गल्ले को कहते हैं जो काट लिया गया हो। तो हसीद का लफ्ज जो है वो काटने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सी फसलें होती हैं ना, तो ऐसे गल्ले जिनको काटा जाता है जैसे गंदुम, मकई, जवार, बाजरा, दालें, चावल वगैरह, तो उनको जब वो पक जाते हैं ना, तैयार हो जाते हैं, तो फसलों को काट कर जखीरा कर लिया जाता है। अब यहाँ पे फल का चुनना, उसके लिए जुनेई का लफ्ज आता है ना, वो नहीं इस्तेमाल किया गया, फल चुना जाता है, लेकिन ये फसलें जो होती है इनको काट कर रख लिया जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर इससे बागात पैदा किए और फसल के गल्ले पैदा किए, और बागात के अंदर हर तरह का फल आ जाता है, वो कि उसमें भी ऐसी जमीनें होती हैं बीच बीच में खेतियां जिसमें हब्बल हसीद पाया जाता है, लेकिन इसका अलग जिक्र कर दिया। और जब बाग है तो बाग में सारे ही फल भी आ जाते हैं, फूल फल सब चीजें, लेकिन वन्नखला खजूर का जिक्र कर दिया। खजूर का अलग क्यों जिक्र किया जबकि बागात के अंदर खजूर तो खुद ही आ ही जाती है। तो खजूर का दरख्त जो था दरअसल अहले मक्का के यहां बेहतरीन फल समझा जाता था, और अरब का खास मेवा, और बड़ी हद तक इनकी गिजाई जरूरत को पूरा करता था। और खजूर का दरख्त जो है उसकी उसके खोशे, उसकी दराज कामती, उसका बेहतरीन होना खजूर के दरख्त का, उसको मोमिन से भी मिसाल दी गई है ना खजूर के दरख्त को। तो अल्लाह ताला ने जो है मुशाहिदा कायनात की हिस और शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करने के लिए जो है वो खजूर के दरख्त उसके खोशों की तरफ मतवज्जो किया। वन नखला और खजूरें बासिकातिन बुलंदो बाला। अब आप देखें कि बासिकातिन जो है इसके मानी क्या है, बुलंदी के लिए वैसे कुरान में तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है अला और ये सिर्फ महमूद भी है और मजमूम भी है, जैसे पसंदीदा कहां पे है वरफानाहु मकानन अलिया वजअलना लहुम लिसान सिदकिन अलिया है ना, और नापसंदीदा कहां पे है इन्ना फिरौना अला फिल अर्थ, दोनों तरह इस्तेमाल होती है ना, तो बुलंदी के लिए आती है। तो बुलंदी किसकी है, जगह की बुलंदी, मर्तबे की बुलंदी भी, सरकशी की बुलंदी भी, हर तरह ही इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो लफ्ज है वो है क्या, यहाँ पे ये जो बासिकात है इससे है बसाका। बसाका जो है ये सिर्फ बुलंदो बाला दरख्तों को कहा जाता है, और खास तौर पर खजूर के दरख्त के बुलंद होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुलंदो बाला दरख्त और खास तौर पर जो है वो खजूर का दरख्त उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है बुलंदो बाला। और इसी तरह शाम खात, शीन मीम खा, ये भी आप पढ़ चुकी हैं, बड़ा होना बुलंद होना, ये पहाड़ों और बुलंदो बाला इमारतों के लिए इस्तेमाल होता है बुलंदी ही। आप देख लें कितना हुसन है कुरान का। तो अब यहां पे जिक्र हो रहा है कि खजूरों के बुलंदो बाला दरख्त लहा, और लहा की जमीर किसके लिए आई कि जो खजूरों के बुलंदो बाला दरख्त हैं जिनके लिए, यानी उन दरख्तों के लिए क्या है, तल उन नदीद। अब मजीद जो है वो दो सिफात है खजूरों के दरख्त की, खजूरों के दरख्त की एक तो ये कि खुद नखल ही बड़ी बेहतरीन बात है हर तरह की खजूरें, और दूसरा बासिकात, तीसरा तलउन। और तलउन आप पढ़ी चुकी हैं कि दरख्त से जो पहला शगुफा उभरता है जो बाहर निकलता है उसको कहते हैं, जैसे गाबा, गुच्छा या खोशा, پھر وہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے مزید. تو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے کھجوروں کو بلند و بالا بنایا، پھر اس کے اندر تلعن ہے، یعنی کھجور کا وہ گدرا گدرا پھل جو شروع میں ہے، بالکل آغاز میں اس کا شگوفہ یا پھل نکلا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ ندید، نون دعا دال جو ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں تہ بر تہ. آپ نے رقم لفظ نہیں پڑھا، ڈھیر، تو رقم لفظ جو ہے بغیر ترتیب کے ڈھیر لگا دیا. رقم سے مراد را کاف میم رکوم، آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے نون دواد یا دال، جس کا روٹ ہے نون دواد دال، اس کے معنی ہے کہ تہ بر تہ کریمے سے رکھے ہوئے، اوپر نیچے رکھے ہوئے، جیسے کسی چیز کو سجا کے رکھا جائے. تو کھجور کے جو شگوفے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ تہ بر تہ ندید. تو اس کے ایک معنی ہے تہ بر تہ کے اوپر نیچے بھی کریمے سے، دوسرا یہ ہے کہ سجاوٹ. یہ لفظ دانتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دانت کیسے ہیں؟ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بڑے حسین بھی لگتے ہیں. اسی طرح یہ لفظ سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سامان جو ہے ڈیکوریٹ کر کے رکھا جائے اور بڑا سجا کر تہ بر تہ ترتیب کے ساتھ اس کو رکھا جائے، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال آپ نے کھجور کے کبھی دیکھے ہیں؟ کھجور لگی ہوئی دیکھی کبھی آپ نے؟ اور کھجور آپ نے لگی ہوئی اگر دیکھی ہو تو آپ دیکھیں کس طرح ایک کھجور پر دوسری کھجور چڑھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ایک پر دوسری سوار ہوئی ہوئی. تو یہ ہے، یہ حسن ہے قرآن کا. اور مشاہدہ دیکھیں، حسی ذوق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کی ربوبیت کی شانوں کا لوگ مظاہرہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق للعباد، بندوں کی روزی کے لیے ہیں یہ سارا کچھ. آسمان سے لے کر آپ یہاں تک آ جائیں، آیت نمبر 6 سے لے کر آپ یہاں تک آ جائیں، تو آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سونا اگلتی ہے، زمین پر پہاڑ ہیں، اور آسمان اور زمین کا تعلق، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا آنا جانا، کہیں اللہ کس طرح بتاتا ہے کہیں کس طرح. اور ایک مٹی، ایک پانی، ایک ہوا، اور اسے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کا رزق اللہ نے پیدا کیا. للعباد، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. واحیینا بہ، اور ہم نے جو ہے وہ زندہ کر دیا اس کے ذریعے. کس کو؟ بلدتم میتا، مردہ زمین کو پانی کے ذریعے اللہ نے زندہ کر دیا. کذالک الخروج، اسی طرح ہے قبروں سے نکلنا. جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے نکالیں گے. یہ ہیں دلائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں توحید پر. آپ دیکھیں توحید کے سارے دلائل ہیں، اور نچوڑ کیا ہے ساری بات کا؟ کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم مر گئے اور مٹی میں ختم ہو گئے؟ قد علمنما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اسی بات کو آپ پھر یہاں پہ لائیں، اور آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کفار کو دھمکی دی گئی ہے، ڈراوا دیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. واصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے جھٹلایا. آپ سورت فرقان کی آیت 38 میں بھی اصحاب الرس کے بارے میں پڑھ چکی ہیں. اور رس جو ہے، رس کے معنی کیا ہے؟ کنواں. تو کنویں والوں نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ جھٹلایا. تو بہرحال کہتے ہیں کوئی کنواں تھا، اس کے ارد گرد کوئی قوم تھی جس نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا. اور جب انہوں نے جھٹلایا تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا تھا. تو نبی کو کنویں میں پھینک کر جو ہے وہ جیسے مار دیا تھا یا مار کر پھینک دیا تھا، تو اس لیے بھی ان کو اصحاب الرس کے نام سے وہ قوم جو ہے وہ مشہور ہو گئی. واصحاب الرس، وثمود، اور ثمود. تو ان ساری قوموں نے جو ہے جھٹلایا. تو قوم ثمود کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ صالح علیہ السلام. وعاد، اور قوم عاد نے جھٹلایا. ان کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ ہود. زور سے جو ہے وہ بولا کریں. और बड़ा अच्छा नुक्ता है याद रखने का, समूद सा से है और कौमे सवाले स्वाद से है, तो इस तरह स्वाद और सा यानी एस आप याद रख सकती हैं। इसी तरह आद में दाल आता है, इसी तरह हूद, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम में दाल आता है, दाल आती है तो आप याद रख सकती हैं। वह आदुन और कौम आद की तरफ जो है किसको भेजा गया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। वह फिरौन और फिरौन, तो फिरौन की तरफ किसे भेजा गया था, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था और उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम थे। वह इख्वान लूत और लूत के भाई, आप देख लीजिए कि अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि लूत अलैहिस्सलाम के जो भाई थे गोया के कौमे लूत, उन्होंने भी झुटलाया। वह असहाबुल ऐकति और असहाबे ऐका ने, और ये ऐका वाले जो थे ये कौन थे, हाँ असहाबुल ऐका के बारे में आप सूरत आराफ में पढ़ चुकी हैं, आप सूरत शोरा में पढ़ चुकी हैं, और असहाबुल ऐका जो थे इनके बारे में क्या आता है कि इन्होंने भी जो है वो अपने पैगंबर का इनकार किया। और ऐका कहते किसे हैं, जंगल को कहते हैं, बन जंगल, तो जंगल वालों ने भी जो है वो अपने रसूल को झुटलाया। और बाज ये कहते हैं कि ये ऐका वाले जो थे ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इनकी तरफ भेजे गए थे। बहरहाल तो दो कौमें थी जो करीब करीब रहती थी, मदियन वाले और फिर साथ ही ऐका वाले, तो उनकी इन्होंने भी झुटलाया। वह कौम तुब्बा और कौम तुब्बा ने, और कौम तुब्बा के बारे में आप सूरत सबा में पढ़ चुकी हैं, आप सूरत दुखान में पढ़ चुकी हैं, और कौम तुब्बा जो है ये कौन थी, ये कौम सबा ही की एक शाख का नाम है। और जैसे कैसरो किसरा जो है बाज बादशाहों का एक लकब है, तो इस तरह इनका कहते हैं कि तुब्बा लकब था। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला ने इस कौम को जो बड़ी जो है शानो शौकत वाली और बड़ी अजीम कौम थी उसको उसका जिक्र किया है कि उन्होंने भी जो है वो झुटलाया। सब ने किया क्या, कुल्लुन कज़्ज़बर रसूला, सब ने रसूलों को झुटलाया। फहक्का वईद, और आखिरकार मेरी वईद इन पर चश्मा हो गई, वईद मेरा डरावा इन पर चश्मा हो गया। इन सारी कौमों का जो गुनाह था मुश्तरका था, और मुश्तरका गुनाह क्या था, रसूलों की तकजीब, रसूलों का झुटलाना। दरअसल जो है वो अल्लाह का झुटलाना है, क्यों, रसूल अल्लाह का एम्बेसिडर होता है, अल्लाह का पैगाम अल्लाह की किताब लेकर आता है, तो रसूल का झुटलाना अल्लाह की किताब का, रसूल के मिशन का झुटलाना, अल्लाह ताला जो दीन चाहता है उसका झुटलाना है। तो जब उन्होंने झुटलाया तो फिर हुआ क्या, फहक्का वईद, आखिरकार मेरा अजाब उन पर चश्मा होकर रह गया। तो इससे पहले 6 आयतों में आखरत के दलाइल दिए गए ना, तौहीद से कायनात से, तो अब यहां पर अरब के गिर्दो पेश की कौमों से जो है वो मिसाल यहां पे चश्मा की गई है। मैंने आपको बताया था दलाइल जो है वो दो तरह के होते हैं, कुछ नकली दलाइल होते हैं, कुछ अकली दलाइल होते हैं। ये है नकली दलाइल, और अकली दलाइल कायनात से दिए गए। और फिर ये बात बताई गई कि जो कौम झुटलाती है उसका अंजाम क्या होता है, उसको नेस्तो नबूद कर दिया जाता है। और आखिरी आयत जो आज के सबक की है, आयत नंबर 15, उसमें क्या फरमाया, फिर वही बात, अफायीना बिल खल्किल अव्वल, सवालिया अंदाज है, क्या पस हम थक गए हैं। आइन या के मानी होते हैं थकावट की वजह से मजीद काम करने से आजिज हो जाना। तो अहले मक्का तुमने समझ रखा है कि पहली दफा ही पैदा करके हम थक गए हैं, अब आजिज हो गए हैं, दूसरी दफा नहीं पैदा कर सकते। अफायीना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम थक गए हैं पहली बार पैदा करके। बल हम फी लब्स मिन खल्किन जदीद, बात ये नहीं है कि हम आजिज आ गए हैं, बल्कि वजह यह है कि वो शक में है। लब्स लिबास जब पहना जाता है तो अंदर सब कुछ छुप जाता है, अंदर क्या है, कैसी हालत है इंसान के जिस्म की, लिबास उसको छुपा देता है। तो लब्स का लफ्ज जो है ये शक और शुबे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये लोग जो हैं ये शक में हैं। मिन खल्किन जदीद, पैदा करना दोबारा, तो ये नई तखलीक की तरफ से शक में पड़े हुए हैं। तो असल बात जो यहां पे बताई जा रही है, یہ لوگ جو ہیں اصل وجہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کوئی نہیں پیدا کیا جانا، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور یہ اسی چیز کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور سورت یاسین آیت 78-79 میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سورت روم کی آیت 27 اس میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یہ کہہ کر مجھے ایذا پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا. حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے. یعنی اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، نہ کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا. تو اگر جو رب پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ کی قدرت کے منکر نہیں ہیں. اہل مکہ اللہ کو مانتے تو تھے، بس ایک نہیں مانتے تھے نا، تو اللہ کی قدرت، اللہ کے کرشمے کچھ ان کو بھی تسلیم کرتے تھے. لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دوبارہ زندگی جو ہے نا، قیامت کی آخرت، یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو آخرت کا، قیامت کا مضمون جو ہے اس سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور ایک ہی بات ہے، اور بار بار اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے بلکہ میرے پاس آؤ گے، اور پھر حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا. واقعی زندگی انسان کی ہے، مانند مرغ خوش نوا، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، ہے نا. اور ہم سب کو جو ہے وہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو ہم میں سے وہ لوگ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے، تو کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. جب حشر میں پوچھا جائے گا تھا پاس خزانہ قوت کا، وہ کس مقصد پہ صرف کیا، اس وقت کہو گی کیا بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو. تو یہ آیات ہماری غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہیں. ہم میں سے مرنے سے کسی کو ڈر نہیں لگتا، اصل میں اپنی بدعملیوں سے ڈر لگتا ہے. جو کہتے ہیں نا موت سے ڈر لگتا ہے، تو اصل میں اپنے عمل، وہ عمل کہ ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے، اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. اور آخرت کی تیاری کے لیے دل سے نفاق کو نکالنا ہے، اور اعضاء سے جو ہے، جوارے سے جو ہے، ایمان اور اسلام کا مظاہرہ کرنا ہے. اور ابھی ابھی جو سورت ہماری ختم ہوئی ہے، ابھی جو پچھلا سبق تھا، اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ زبان کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، اخلاق سنواریں، کردار سنواریں، اور یہاں پہ عقیدہ پھر مضبوط کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے، اور ہم سے وہ کام لے لے جسے اللہ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.